मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीपक कुमार जो बिहार शरीफ नालंदा से हैं, अमरदीप बाघमारे आप आदिलाबाद तेलंगाना से हैं, राजीव कुमार झा आप बिहार से हैं, रक्षा राजपूत आपका गांव है रामसलिया जिला है दमोह मध्य प्रदेश से हैं और भूमिका गुप्ता आप उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। तो दीपक, अमरदीप, राजीव, रक्षा और भूमिका आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत इनफैक्ट मैं बात तो करूंगा सिविल सेवा परीक्षा 2019 की तैयारी के बारे में ही लेकिन एक अलग ही तरीके से, और ये तरीका ये होगा कि किसी भी टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके लिए जो अभी किसानों की समस्या जो चल रही है उसको एक मॉडल की तरह लेंगे। तो इसमें आप किसानों की समस्या पर भी थोड़ा सा जान सकेंगे, के बारे में जान सकेंगे और सिविल सेवा परीक्षा के टेक्निक को भी समझ सकेंगे। लेकिन आइए इससे पहले थोड़ी सी न्यूज को देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी जो खबर है दोस्तों वो है कि रिजर्व बैंक ने जो रेपो दर है उसमें 0.25% की वृद्धि की है। राइट, मैं अपने क्लास स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो रिजर्व बैंक का एक सिस्टम होता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर SLR CRR इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया था और आपको डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के आधार पर इसे मैंने समझाने की कोशिश की थी। और चूंकि हर 2 महीने में ये मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक लेकर के आता है और इन पर लगातार बात होती रहती है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसके विश्लेषण पर नहीं जाऊंगा, इसे अब यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं जरूर कहूंगा, कल आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा और आज अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, और वो ये कि चूंकि रिजर्व बैंक ने रेपो दर बढ़ाया है 0.25%, तो इसके कारण जो ब्याज की दर है वो बढ़ गई है। यहां तक कि अगर आप 25 लाख रुपए का कर्ज बैंक से लेते हैं तो अब बढ़ी हुई ब्याज दर के तहत आपकी हर महीने EMI में 400 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, यानी कि रेपो दर बढ़ जाने से ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, इस पर विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, सोचिए। सेकेंड पॉइंट, आपने अखबारों में ये भी पढ़ा होगा कि रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा है कि महंगाई दर बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाला है, जिस इन्फ्लेशन के बारे में भी मैंने क्लास में बहुत विस्तार से आपको समझाया है, यानी कि महंगाई दर बढ़ने वाली है। तो उस महंगाई दर को नियंत्रण में रखने के लिए रेपो दर में वृद्धि की गई है, और आप देखिए कि रेपो दर में वृद्धि कितने साल के बाद की गई है। तो महंगाई को ये रेपो दर की वृद्धि कैसे नियंत्रित कर सकती है, आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। एक बात मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां कि इस बार प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स पर ही बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिए कि वो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स पर तो नहीं है, है इकोनॉमी से ही, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का आप कह लीजिए कि एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। जैसे GNP पर प्रश्न पूछा गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर, तो अब आप जब GNP को आप देखेंगे तो परिभाषा तो आपकी समझ में आ जाएगी, आ गई होगी, रट भी लिया होगा आपने, जानते भी होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वो आपके बिल्कुल अप्लाइड फॉर्म में है, एकदम अप्लाइड फॉर्म में है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानते होंगे, ये क्या होता है आपको मालूम होगा, लेकिन जब आप 4 विकल्प उसके देखते हैं तो आप देखते हैं कि वहां सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में नहीं बताया गया है। वो बता रहा है कि अगर सरकार ऐसा करे तो ये तो इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, तो ये अब जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस आपके सामने एक नया चैलेंज पेश कर रहा है। हालांकि ये नहीं है कि ये कोई नई बात है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन इस बार इस तरह की चीजें थोड़ी सी ज्यादा हुई है। तो मित्रों अकॉर्डिंगली अब आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछले से जो सिस्टम चला आ रहा है, ये नहीं कि उसके तहत उन्होंने कोई बड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है इस बार के एग्जामिनेशन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन किया है। और वो भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जो आपसे किसी बड़ी नई चीज की मांग करता हो, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः आपको थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करना पड़ेगा, तैयारी करने के ढंग में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा और आप अभी नए पैटर्न के तहत अपने आप को बिल्कुल सहज महसूस करने लगेंगे। तो मित्रों ये हुई पहली न्यूज। दूसरी जो है, आपने देखा कि सरकार ने चीनी मिल्स के बारे में कुछ फैसले किए हैं, गन्ना उत्पादक किसान जो नाराज है। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो ये कहा जाता है, ये बहस चल रही है पिछले दो साल से देश में कि हमारे विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये दोनों एक साथ कराए जाएं। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब आपको लग रहा होगा कि कहां चीनी और गन्ना के मामले में मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। मित्रों यही क्षमता आपको सिविल सर्विस के लिए पैदा कर दी होगी, जानबूझकर मैं ये बात कर रहा हूं। अब आप देखिए कि सरकार ने अभी चीनी मिल के बारे में निर्णय लिया है ना कि 8,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, फलाना किया जाएगा, वो बफर स्टॉक रखेंगे चीनी का, निर्यात के लिए निर्धारित कर दिया गया है कि इतना चीनी निर्यात किया जाएगा। ये सारी बातें की गई ताकि भारत में चीनी की कीमतें थोड़ी सी ठीक ठाक हो सके, क्योंकि चीनी की कीमतें कम हो गई, यानी कि शुगर की कीमत कम हो गई है, जिसके वजह से चीनी मिल को नुकसान हो रहा है, तो गन्ना किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, ये कुल मिलाकर के प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि सरकार ने अभी यह निर्णय लिया क्यों। आपको मालूम है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, लोकसभा का एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुआ, और उस संसदीय क्षेत्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। बुरी तरह से तो नहीं लेकिन कह लीजिए कि पराजित हुई, जबकि इससे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत कर आई थी 4 साल पहले। और हारने का कारण रहा वहां के गन्ना किसानों के अंदर का आक्रोश कि सरकार ने उनसे यह वायदा किया था लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। तो अब आप देखें कि जब वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में है, तो इस चुनाव की वजह से उसे लगा कि नहीं, किसानों में नाराजगी है और यदि हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो 2019 के चुनाव में हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने गन्ना किसानों के बारे में यह फैसला ले लिया। कल्पना करके देखिए कि ये चुनाव नहीं हुए होते, देखिए कल्पना करने की बात है, ये चुनाव नहीं हुए होते तो स्वाभाविक है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद चलता, किसान अपना आक्रोश अपना असंतोष व्यक्त नहीं कर पाती। यही तो डेमोक्रेसी है कि उन्होंने वोट के माध्यम से अपना आक्रोश अपना असंतोष सरकार के प्रति व्यक्त कर दिया और सरकार ने उसे फिर राइट सही ठहर कर दिया कि भाई ठीक है आप असंतुष्ट हैं तो आपकी मांग हम पूरी करते हैं, यही डेमोक्रेसी है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएं तो फिर ये चीज नहीं होती, और अलग अलग अगर कभी कभी जब ये सीट खाली होती है चुनाव हो तो बट नेचुरल है कि एक डेमोक्रेसी की जो एक कंटिन्यूटी होती है वो फिर लंबे समय तक बनी रहेगी, वो बीच में भंग नहीं होगी। तो ये एक उदाहरण है जिसके माध्यम से आप अपने इस तथ्य को पुष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, देखिए कि कैसे गन्ना किसान और फिर कैसे आप उसे जोड़ करके पॉलिटिक्स से देख सकते हैं, और फिर उस पॉलिटिक्स में कैसे आपके जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक साथ चुनाव का होना, वो प्रूफ हो जाता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, सिविल सेवा परीक्षा 2019 की तैयारी। एक बात आप याद रखें मित्रों, अगर आप सच में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो, और वो ये कि आपको विचार करने की आदत डालनी होगी। विचार करने की आदत का मतलब है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को केवल पढ़कर मत छोड़ दीजिए कि पढ़ा और छोड़ दिया, रटा और छोड़ दिया, और फिर उसको तोते की तरह आप दोहराते रहें। उससे बात नहीं बनेगी। मेंस में हो सकता है कि 20 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जहां तोता रटंत का सिस्टम आपकी मदद कर दे, लेकिन उससे बात तो नहीं बनेगी ना। वो उतनी बारिश नहीं हुई है कि फसल लहलहा जाएगी। आफ्टर ऑल फसल जब तक लहलहाएगी नहीं तब तक आप उसे काटेंगे कैसे। तो उस भ्रम में मत रहिए कि 2-3 प्रश्न चींचा या चलिए 3-4-5 प्रश्न भी आपके बन गए रटने से, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर आप करेंगे क्या? आप सिविल सर्विस के अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए, और इस बार अभी जो प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको उठा करके देखिए। आपको साफ साफ ये दिखाई देना चाहिए। मुझे मालूम है कि ज्यादातर स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट में यही बेचैनी है कि कहां से पूछ लिया गया, कहां से पूछ लिया गया, किस किताब से आया, किस मैगजीन से आया है। आपको भटकने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी आए आपको क्या लेना देना है, आपके कोर्स के अंदर से ही, सिलेबस से ही है। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं होती है कि आया कहां से है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, और यह है, कारण यह है कि आपने उसे ठीक से समझा नहीं है, बस दैट्स ऑल, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और जिस दिन आप उसे समझ लेंगे तो फिर वो कहीं से भी पूछे उसे क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए, अगर आपको पता भी लग जाए कि ये क्वेश्चन इस मैगजीन से आया है, ये क्वेश्चन इस किताब से आया है, तो उसे क्या होना जाना है? क्या आप उससे ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि नहीं, अगर इस किताब से इस बार प्रश्न पूछे गए हैं तो अगली बार भी उसी किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे? ये तो मुझे लगता है कि ये निष्कर्ष निकालना तो अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। नहीं, सवाल ये है कि आप एक बैट्समैन हैं, दैट्स ऑल, और बैट्समैन के नाते आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि सामने कोई भी बॉलर हो, पहली बात तो आप आउट नहीं होंगे, और दूसरी बात है आप रन बनाएंगे। आप अपनी चॉइस से बॉलर नहीं मांग सकते कि भैया मुझे तो यही बॉलर भेजो मेरे पास, तब तो मैं बैटिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और एक ही बॉलर पता लगा कि आप एक ओवर में 6 बॉल फेंक रहा है और 6 तरीके से फेंक रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि भैया ये क्या तमाशा कर रहे हो, 6 तरीके से क्यों फेंक रहे हो, तुम एक आदमी हो, एक ही ओवर फेंक रहे हो तो एक ही तरीके से फेंको, आप नहीं कर सकते। तो आप इस चैलेंज को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इस चैलेंज को नहीं समझेंगे, मान करके चलिए कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अभी किसानों की समस्या देख रहे हैं आप, राइट, कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। ढेर सारे डिस्कशंस चैनल्स पर आ रहे हैं, अखबारों में आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं, खूब सारी सामग्री आ रही है, भरी हुई है। राजनेता भी अपने अपने ढंग से बातें कर रहे हैं, सरकार अपने अपने ढंग से कह रही है हमने ये किया, हम ये करेंगे, वायदे करे, सब चीजें आप सुन रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी भीड़ में से आपके काम की क्या चीजें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप कुछ बेसिक चीजें, थोड़ी सी चीजें, अगर आपकी जगह मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं तो इस पूरे के पूरे भीड़ से, या जहां दुनिया भर की बम्बार्डिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की, इसमें से मैं मुश्किल से मैं कह रहा हूं कि 2 पेज का मटेरियल निकाल करके अलग रख लूंगा, बात खत्म हो गई। हार्डली 2 पेज भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। कुछ थोड़े से पॉइंट्स और कुछ थोड़े से आंकड़े, दैट्स ऑल। बस अब मेरी क्षमता यह होनी चाहिए कि मैं इन आंकड़ों और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकूं। ये मुझे आना चाहिए, उसको कुक करना आना चाहिए, उसे पकाना आना चाहिए। अगर मुझे वो पकाना नहीं आता है तो फिर मैं ये मान करके चलूंगा कि मुझे ये पकाना सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं सीखा जा सकता है, ये सीखा जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है, और अगर सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो सीखना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में फिलहाल इतना ही। हम अभी और भी आगे बातें करेंगे। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं 2 क्लिपिंग्स ही सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की एक क्लिपिंग है मित्रों, जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, और इस बार देखिए कि प्री एग्जामिनेशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में एक क्वेश्चन आया है, जो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपने को इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है ये मालूम हो। तो मैंने वो पेपर देख लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, तो उसके तहत बट नेचुरल है कि अब मेरा जो डेली ऑडियो लेक्चर होता है और जो आप लोगों को क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मित्रों, आप ये सब देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। पिछले दो दिनों से मुझे कुछ मेल मिल रहे हैं और मैंने चर्चा की थी आपको कि हमारे एट्थ बैच का एक स्टूडेंट ने मुझे सूचित किया था कि मैंने क्लास में उनको जो हेडेक होता है उसके लिए कुछ योग की विधि बताई थी, बेसिकली प्राणायाम की विधि थी। तो बेसिकली मित्रों ये तो करके दिखाने की चीज होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं नाम बता देता हूं। देखिए अगर कोई सिखाने वाला आपको मिलता है तो आप उनसे सीख सकते हैं। तीन मूलतः और तीनों प्राणायाम से ही जुड़ी हुई विधियां हैं, इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। कल भी मुझे एक मेल मिला है जिसमें स्टूडेंट ने लिखा है कि उसको इससे बहुत फायदा हुआ है। तो मित्रों उसमें एक है अनुलोम विलोम जो बहुत ही पॉपुलर है, दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम ये भी बहुत पॉपुलर है, और तीसरा है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करना, तीन बार ओम का उच्चारण, पांच बार भ्रामरी प्राणायाम और इसी तरह से 5-7 मिनट अनुलोम विलोम। ये तीनों बड़े मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपका लेंगे, लेकिन इस बीमारी से चूंकि मुझे स्वयं इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है तो मुझे लगता है कि आपको भी लाभ मिल सकता है और इस बीमारी से आपको छुटकारा आपका हो सकता है। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: राजेश कुमार चंडीगढ़ से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, राम निवास वर्मा इलाहाबाद से, विलास नरवड़े, जितेंद्र सिंह लखनऊ से और स्वाति रानी किरतपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।